सामान्य शक्ति सीमित है, उसको प्रत्येक प्राणी को भगवान ने इतना ही सामान दिया है कि वो अपने जीवन का गुजारा कर ले, कीड़ों को, मकोड़ों को, पशु और पक्षियों को सिर्फ इतना ही ज्ञान और साधन और शक्ति और इंद्रियां मिली हैं ताकि अपना पेट भर ले और प्रकृति की इच्छा पूरा करने के लिए अपनी औलाद को औलाद पैदा करता रहे, बस और ज़्यादा ही नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा जानना हो, इससे कुछ प्राप्त करना हो, तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तब आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ शक्तियों के भंडागार भरे पड़े हैं, वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ शक्तियों के भंडागार भरे पड़े हैं। एक जगह ऐसी भी है जहाँ बहुत शक्ति भरे पड़े हैं, जहाँ संपत्तियों का कोई ठिकाना नहीं, जहाँ समृद्धि का अनंत शक्ति है, सारे विश्व का मालिक कौन है? भगवान है। ये उसी का तो सामान है जिससे उन्होंने दुनिया को बना दिया। जहाँ आप जो कुछ भी देखते हैं वैभव, ये भगवान के भंडार का एक छोटा सा चमत्कार है। पृथ्वी के अलावा और भी देश हैं, और भी लोग हैं, उन सबको भी भगवान का भंडार भरा हुआ पड़ा है। बड़ा संपत्तिवान है भगवान। आपको अगर संपत्तियों की जरूरत है, सफलताओं की जरूरत है, विभूतियों की जरूरत है, तो अपना पुरुषार्थ इस काम में खर्च कर लीजिए कि उस भगवान के साथ में आप रिश्ता बना सकें, उसके साथ में आपको जोड़ने में समर्थ हो सकें। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आप किसी मालदार आदमी के साथ में अपना रिश्ता मिला लें तब मजा आ जाए। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है? लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल छोटे से आदमी थे, लेकिन पंडित नेहरू के साथ में उन्होंने अपने घने संबंध बना लिए। उनकी वजह से MLA भी हो गए, उनकी सहायता से वो UP के मिनिस्टर हुए हुए, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी हो गए, फिर उनके मरने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी भी हो गए। बहुत शानदार थे लाल बहादुर शास्त्री। ये उनके अपने प्रसाद का उतना फल नहीं था जितने कि नेहरू जी के सहयोग का, उनकी निगाह में उनकी इज्जत जम गई। उन्होंने ये देख लिया था कि ये आदमी बड़ा उपयोगी है, उसकी सहायता करनी चाहिए। उनकी सहायता से उनने भी लाभ उठाया, इसीलिए उनकी सहायता भरपूर की पंडित नेहरू ने। ठीक यही बात हर जगह साबित होती है। एक सर्वशक्तिमान सत्ता है भगवान, उसके साथ अगर आप जोड़ लें तब तो आपकी मालदारी का कोई ठिकाना न रहे। आप इतने संपन्न हो जाए, मैं क्या कहूँ आपसे। आप बाबा जलाराम की तरीके से संपन्न हो सकते हैं, आप सुदामा की तरीके से मालदार भी हो सकते हैं, आप विभीषण की तरीके से मालदार भी हो सकते हैं, आप सुग्रीव की तरीके से मुसीबतों से बच करके फिर अपना खोया हुआ राजपाट पा सकते हैं, आपको नरसिंह मेहता की तरीके से हुंडी भी आप पर बरस सकती है। उसकी यहाँ कुछ कमी है क्या? उसकी यहाँ कोई कमी नहीं है। इसलिए यहाँ जो आपको बुलाया गया है, उसका एक कारण ये भी है कि आपसे ये कहा जाए कि आप भगवान के साथ में अपना रिश्ता जोड़ लें। आप ये पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं, उसका मतलब ये है कि आप इन उपायों के माध्यम से अपना रिश्ता भगवान के साथ में जोड़ लें, और उनके साथ में आप जोड़ लें तो मजा आ जाए। एक स्त्री, एक गरीब घर की लड़की किसी मालदार पति के साथ में शादी हो जाए तब तो दूसरे दिन उसकी मालकिन हो जाती है। क्यों? उसने रिश्ता मिला लिया ना। रिश्ता मिलाने में क्या करना पड़ता है? बस यही तो मुझे कहना था आपसे। रिश्ता मिलाने में आप जो ख्याल करते हैं कि रिश्वत देनी पड़ती है और चापलूसी करनी पड़ती है ना, इस काल को आप हटा दीजिए। रिश्वत देकर के भगवान को अपना मित्र बना सकते हैं, उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मत विचार कीजिए। और आप ये मत विचार कीजिए कि जीव की नोक से कुछ मीठी बातें और चापलूसी की बातें स्तोत्र पाठ करने के बाद में भगवान को आप अपना बना सकते हैं। आप भगवान की समझदारी पर यकीन कीजिए और ये समझिए, भगवान आपकी जवान को नहीं, आपकी नियत को देखता है, दृष्टिकोण को देखता है, चरित्र को देखता है, चिंतन को देखता है और आपकी भावना को देखता है। अगर इस क्षेत्र में आप सुने हैं तो आपके कर्मकांड पर बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो सकेंगे। आपने देखा है ना कितने पंडित लोग हैं जो तरह तरह के विधि विधान और कर्मकांड जानते हैं पर सब खाली हाथ रहते हैं। आपने देखा है ना कितने साधु महात्मा तरह तरह के जप करते हैं, तिलक लगाते हैं और पाठ पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्नान पूजन करते हैं, लेकिन उनकी नियत, उनकी भावना, उनका दृष्टिकोण अगर ऊँचा न हुआ तब, उनका व्यक्तित्व ऊँचा न हुआ तब, उनका अंतकरण ऊँचा हुआ न हुआ तब, तब उनके लाल पीले कपड़े पहन लेना और तरह तरह के आडम्बर बना लेना और तरह तरह के क्रियाकृत कर लेना बिल्कुल बेकार चला जाता है और सामान्य नागरिकों से भी गई हुई स्तर की जिंदगी जीते हैं। भगवान की कृपा कहाँ मिलती है? भगवान की कृपा प्राप्त करने का जो असली रहस्य है उसको आपको जानना ही चाहिए। क्या करना होगा? आप उसके साथ में जुड़ जाना होगा। जुड़ जाने को ही उपासना कहते हैं। उपासना का मतलब है जुड़ जाना, पास बैठना, जुड़ जाना। किस तरीके से जुड़े? मैं आपको कुछ थोड़े से उदाहरण बताऊंगा। जुड़ना क्या सिखाते हैं। आपने आग में लकड़ी को गिरते हुए देखा, लकड़ी की क्या कीमत है, दो कौड़ी की लकड़ी को आप पैर के नीचे पटक दीजिए तो तोड़ के फेंक दीजिए, छू लीजिए और इधर से उधर काटते रहिए, लकड़ी की क्या कीमत हो सकती है। लेकिन आग के साथ में अगर उसके उसको मिला दिया जाए तो आप देखेंगे थोड़ी देर में लकड़ी गर्म होने लगती है और आग हो जाती है, फिर आप छू भी नहीं सकते। और जो गुण आपके हैं, अग्नि भगवान के हैं, देवता के हैं, वही आप देखेंगे कि उस नाचीज अग्नि के भी हो जाते हैं। बस ठीक यही तरीका व्यक्ति को और जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का है। तो क्या करें, नज़दीक आ जाए, बस वही तो मैं कह रहा हूँ, नज़दीक आने का एक तरीका है, वो तरीका है अपने आप को सौंप देना और हम देना, उसकी छन पर चलना। लकड़ी अपने आप को हम देती है और सौंप देती है, आग उसको जलाती है तो जलने से रजामंद है, उसी के साथ तो घुलेगी, जब घुल गई तो उसके साथ हो जाती है। हमारी और आपकी नियत ये हो कि हम भगवान के साथ में घुल जाएंगे, घुलने का मतलब सौंप देंगे, उनको अपने में नहीं मिला लेंगे, उनको अपनी मर्जी के ऊपर चलाएंगे नहीं, बल्कि हम अपनी मर्जी के उनकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। इसी का नाम समर्पण है, इसी का नाम विलय है, इसी का नाम विसर्जन है, इसी का नाम शरणागति है, बहुत से नाम इसके दिए गए हैं। उपासना का तत्व ज्ञान इसी पर चला हुआ है। आप भगवान के अनुयायी होते हैं कि नहीं, आप भगवान का अनुशासन मानते हैं कि नहीं, आप भगवान की इच्छा अनुसार चलते हैं कि नहीं, आप भगवान के बताए हुए इशारे और संकेत पर अपने कदम बढ़ाते कि नहीं, एक ही प्रश्न है बस, और कोई प्रश्न नहीं है। आपका वो ख्याल ठीक नहीं है कि हम अपनी भगवान को अपनी मनमर्जी पर चला सकते हैं। आप और भगवान को मर्जी पर चलाएंगे, क्यों आपके मर्जी पर चलाएंगे, आपकी मर्जी पर क्यों चलने लगे भगवान। भगवान की अपनी कुछ नीति और नियम है, कुछ मर्यादा और कायदे हैं, आपके खुशामद की वजह से आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए अब भगवान अपनी नीति को छोड़ देंगे, नियम को छोड़ देंगे, मर्यादा को छोड़ देंगे, कायदे कानून को छोड़ देंगे और अपने आप को पक्षपाती का इल्जाम लगवाएंगे, पक्षपाती होने का कलंक लेंगे ना, ऐसा भगवान कर नहीं सकेंगे। आपके मन में ये ख्याल हो कि मिन्नतों खुशामदों से भगवान को अपने नज़दीक ले आ सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, आप ख्याल छोड़ दीजिए, तब क्या करना पड़ेगा, एक ही करना पड़ेगा, आप उसको सौंप दीजिए, अपने आप को उनके हाथ की कठपुतली बना दीजिए और देखिए भगवान कैसे क्या काम करते हैं। पानी दूध में मिल जाता है और उसका दूध के बराबर हो जाता है कीमत। एक छोटी सी बूंद, नाचीज बूंद समुद्र में गिरती है और अपनी हस्ती को नाबूद कर देती है, फिर छोटी सी बूंद समुद्र की कीमत की हो जाती है, समुद्र बन जाती है, उसका हैसियत पर समुद्र के बराबर हो गई। पानी दो कौड़ी का, लेकिन जब दूध में शामिल हो गया तो उसकी हैसियत पानी की दूध की बराबर। नाला नदी में शामिल हो जाता है, नाला दो कौड़ी का, गंदा गली कीचड़ से भरा हुआ, लेकिन जब वो नदी में शामिल हो गया तब नदी में शामिल हो गया तो वो नदी हो जाता है, पानी उसका नदी की तरह से पूजा जाता है। गंगा में गिरे हुए नाले का गंदा पानी भी गंगा जल कहलाता है, कैसे हो गया, नदी ने अपने आप को समर्पित कर लिया, इसको नदी को। अगर समर्पित न करता तब, अगर आपकी जैसी मन की स्थिति का होता तो वो नाला क्या कहता, गंगा जी से कहता आप नाला बन जाइए और हमारी मर्जी पूरी कीजिए, हमारे साथ साथ रहिए ना, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान को आप अपने साथ अपने जैसा नहीं बना सकते और अपनी मर्जियाँ पूरी कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, आपको ही उनके पीछे चलना पड़ेगा। पारस के बारे में सुना है ना आपने, पारस को शुगर के लोहा सोना हो जाता है, लेकिन लोहा बदल जाता है, लोहा वैसे ही बना रहे, पारस से कहे आप लोहा बन जाइए, नहीं लोहा पारस नहीं बन सकता, पारस को बदलना पड़ेगा। चंदन के पास आपने देखा है ना, चंदन के पास उगे हुए पौधे चंदन की खुशबू लेते हैं और चंदन बन जाते हैं। आप तो ये चाहते हैं कि चंदन को हम जैसा बन जाना चाहिए, चंदन आप जैसा नहीं बन सकता, छोटी झाड़ियों को चंदन जैसा खुशबूदार बनना चाहिए, चंदन बदबूदार झाड़ी नहीं बन सकता, भगवान पर दवा मत डालिए। क्या करना पड़ेगा, आप उसके साथ में घुस जाइए, लिपट जाइए, देखो देखा है ना, बेल एक पेड़ के साथ में लिपट जाती है और बेल जितना ऊंचा है, पेड़ जितना ऊंचा है उतनी ऊंची होती चली जाती है बेल। अगर वो बेल अब अपने मनमर्जी से फैलती तो सिर्फ ज़मीन पर फैल सकती थी और कैसे ऊंची उठती, उठना संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था, लेकिन इतनी ऊंची कैसे हो गई, क्योंकि वो उसे गुथ गई, लिपट गई। आप भी उसमें गुथ जाइए ना, लिपट जाइए ना, फिर देखिए कि आपकी ऊंचाई पेड़ के बराबर होती है कि नहीं? पेड़ कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है। और भगवान कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है। आप जरा खुद के देखिए ना, उसके अनुशासन को पालिए ना, उसकी इच्छा के हिसाब से चलिए ना, फिर देखिए आप भगवान के बराबर बनते हैं कि नहीं। आप भगवान के बराबर बन जाते हैं। पतंग आपने बच्चों के हाथ में लगी हुई देखी है ना, बच्चे के हाथ में सिरा होता है, पतंग का झटका देते रहते हैं और पतंग ऊपर आसमान पर जा पहुँचती है। और पतंग अपनी डोरी को बच्चे को सुबोध न करे तब, पढ़ाने वाले को सुबोध न करे तब, तब उसको जमीन पर पड़ा रहना पड़ेगा। आप अपने जीवन की बागडोर और जीवन का आधार भगवान के हाथ में नहीं सौंपें और उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलें, तो पतंग की तरीके से आसमान पर उड़ने की अपेक्षा मत कीजिए। आपने देखा है ना, दर्पण में जो चीज़ सामने आती है वो दर्पण वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है। आपके जीवन में चारों ओर से कई छाया हुआ है, इसलिए आपका दर्पण भी, आपका मानसिक स्तर भी रीत जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान को और सामने रखें, उसके नज़दीक जाएं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में भी भगवान की छवि और भगवान की हवा और भगवान की शक्ति उसी तरीके से बन जाती है जिससे कि दर्पण के सामने खड़े हुए आदमी की बन जाती है। आप बंसी देखिए ना, बंसी अपने आप को पोली कर देती है और खाली कर देती है। पोली और खाली करने के बाद में फिर वहाँ जा पहुँचती है, ऐसे कहती है आप बजाइए, जो आप कहेंगे वही मैं गाऊँगी। बस वो फूंक मारता जाता है बजाने वाला और वो बंसी आती है। भगवान को फूंक मारने दीजिए और आप बजने के लिए तैयार होइए। कठपुतली को आपने देखा है, कठपुतली के धागे बाजीगर के हाथ में लगे होते हैं, बाजीगर इशारा करता जाता है, कठपुतली बिना कुछ किए बिना नाचना शुरू कर देती है। दुनिया को दिखाई पड़ता है कठपुतली का नाच कैसा शानदार हुआ। कठपुतली का नाच नहीं है, बाजीगर का है। बाजीगर का नहीं, बाजीगर का भी नहीं, किसका है? धागों का नहीं, धागों का भी नहीं, किसका है? कठपुतली के समर्पण का है। कठपुतली ने अपने हर शरीर के हिस्से में धागे बनवाए और उनको बाजीगर के हाथ में सौंप दिया। बस यही आपको करना पड़ेगा। कठपुतली के तरीके से अगर आप बाजीगर के हाथ में अपने जिंदगी की नाप सौंप सकते हो, अपनी विचार और चिंतन सौंप सकते हो और अपनी इच्छा और आकांक्षाएं सौंप सकते हो, तब आप जरा देखिए ना कैसा मजा आता है। आप उस जनरेटर से संबंध हो जाइए जिसके साथ में जुड़ने पर ही बल्ब चलते हैं। पंखे तभी चलते हैं जब उससे बिजली घर से जुड़ जाता है। अगर आप जुड़ेंगे नहीं तब, तब आप बल्ब हैं तो मुबारक, आप रखे रहिए। आपकी 250 रुपये कीमत है, आप प्रकाश नहीं दे सकते, आप हीटर नहीं हो सकते, आप कूलर नहीं हो सकते, आप बिजली के पंखे की हवा नहीं चला सकते, जनरेटर के साथ जुड़ते नहीं हैं तब। आपकी हैसियत है तो ठीक है, आपकी हैसियत आपके लिए मुबारक, लेकिन जो अनंत शक्ति के साथ आप जुड़ेंगे तब देखिए आप कितनी कमाल कर सकते हैं। इसलिए आदमी की सबसे बड़ी समझदारी यह है कि अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ लें, शक्तियों के साथ में अपना स्थान मिला लें। ये कठिन है, जरा भी कठिन है, बहुत सरल है। आपने देखा है ना, नल उसके साथ टंकी के साथ जुड़ जाता है, टंकी में पानी भरा हुआ पड़ा है, नल को आप खोल दीजिए, नल में क्या है बेचारे में? कुछ भी तो नहीं, कम कीमत का नल है। लेकिन टंकी में भरे हुए पानी के साथ में अपने रास्ता मिला लिया, जब तक टंकी में पानी भरा हुआ है तब तक बराबर नल को, नल से आपको पानी मिलता रहेगा। भक्त छोटा हो तो क्या, भक्त नाचीज हो तो क्या, अगर आपने सच्चे मन से भगवान के साथ अपने आप को जोड़ के रखा है तो भगवान की जो संपदा है और जो उसकी विभूतियाँ हैं भक्त की अपनी हो जाती हैं और बराबर उसको मिलती चली जाती हैं। तो करना क्या पड़ेगा? सौंपना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? उनको बहकाना फुसलाना अपनी मर्जी पर चलाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ही झुक जाना पड़ेगा और आपको ही क्या ना मानना पड़ेगा, आपको ही समर्पित करना पड़ेगा, बीज आपको ही बनना पड़ेगा। बीज आप अपने आप को बोइए ना, आप बीज बोइए, फिर देखिए कैसी फसल आती है। मक्का का एक दाना खेत में बो देते हैं, मक्का का पौधा खड़ा हो जाता है, उसमें से 6 भुट्टे आते हैं, एक एक भुट्टे में 1,000 दाने होते हैं, 6,000 दाने, 6,000 दाने हो गए ना, किसके हुए? एक बीज के। आप भगवान की खेती में अपने आप को बोइए, गला दीजिए ना, गलाने का मन नहीं, गलाइए। आप गलाने की हिम्मत नहीं करेंगे, बीज को अपनी पोटली में रख के बैठे रहेंगे डिब्बी में और ये अपेक्षा करते रहेंगे जमीन हमारी खेत पैदा कर दी, हमको नहीं गलना पड़े। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ, आपको गलना पड़ेगा। अगर आप नहीं गलेंगे तब फिर आप भगवान से क्या उम्मीद करेंगे? आपने सुना है ना, भगवान की भी आदत कुछ ऐसी है कि बराबर मांगते रहते हैं, पहले हाथ पसारते हैं, बाद में कुछ देने की बात कहते हैं। अगर हाथ, अगर उनके हाथ पर आप अपना कुछ रख नहीं सकते तो फिर क्या पाएंगे? आप चावलों से नहीं खरीद सकते, आप धूप बत्ती से नहीं खरीद सकेंगे, और आप आरती करके पानी समझिए और जीव के नोक से स्तोत्र पाठ करके या छोटे छोटे कर्म कांड करके भगवान के अनुग्रह की आप अधिकारी नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपना दृष्टिकोण, चिंतन और चरित्र और भावना और लक्ष्य सब के साथ भगवान के साथ में जोड़ देना पड़ेगा। जिस दिन आप ये करने को तैयार हो जाएंगे फिर आप देखिए क्या क्या होता है, फिर आप देखिए कैसा मजा आता है। भगवान की मर्जी तो पूरी कीजिए और देखिए आपको कुछ मिलता है क्या। अभी मैंने सुदामा का नाम लिया ना आपने, नियत सुदामा ने अपनी पोटली दे दी थी ना। पोटली देने के बाद में भगवान ने जो दिया था वो दिया था। भगवान तो मांगते ही जाते हैं, आपके पास भगवान कभी आए था? देते हुए नहीं आए, ये मांगते हुए आए। शौरी के पास गए थे, मांगते हुए गए, अरे हम बहुत भूखे हैं, कुछ खाना खिलाइए। भगवान उसके लिए कुछ सोना चांदी लेके गए, कुछ हीरा मोती लेके गए, कुछ नहीं। भगवान कहीं भी जाते हैं तो मनुष्य की पात्रता को परखने के लिए, उसकी महानता को विकसित करने के लिए एक ही दवा कहते हैं, आपके पास क्या है हमारे सुपुर्द कीजिए। सुपुर्द कीजिए, शबरी ने लूटे गए थे जो कुछ भी था उसकी सुपुर्द कर दिया, सुदामा के पास जो कुछ था सुपुर्द कर दिया। गोपियों के पास भी गए थे, गोपियों को भगवान प्यार करते थे, उनसे यही पूछते थे लाइए आपको दीजिए, छाछ से ही मांगते थे, कर्ण से भी मांगने गए थे, बलि से भी मांगने गए थे, हर जगह भगवान मांगने ही चले जाते हैं। भगवान की आदत को आप जानेंगे नहीं तो मुश्किल पड़ेगा, और आप अपने आप को सौंपने के लिए आमादा ना होंगे तो आप भगवान को अपना नहीं बना सकेंगे। लैला मजनू की कहानी सुनिए, नहीं सुनी? अच्छा सुनिए। एक मजनू था, लैला को प्यार करता था और वो चाहता था लैला की शादी उससे हो जाए, लेकिन उसका बाप तैयार नहीं था। बाप ने कहा नहीं, हम भिखारी के साथ में क्यों शादी करेंगे? तो फिर लैला ने कहा मैं चले अपनी मर्जी से भी शादी कर लूँ, लेकिन पहले देखूँ तो सही, ऐसे ही अपने खुद गर्जी के लिए, मतलब के लिए ही मुझे अपने शिकंजे में कसना चाहता है या वास्तव में मुझे प्यार करता है? प्यार करने का मतलब होता है देना, प्यार का मतलब देना, प्यार का मतलब देना, प्यार का मतलब देना। अगर प्यार का मतलब आप देना नहीं समझते हैं, प्यार का मतलब आप ये समझते हैं कि भगवान की भक्ति करें और उनको कठपुतली की तरीके से चलाएं और उचित और अनुचित जो कुछ भी फायदे उठा लें इसको भक्ति करते हैं, तो आप अपनी भक्ति की परिभाषा बदल दें और इस भक्ति को से आप बाज आइए और ये भक्ति को आप भक्ति कहना बंद कर दीजिए। भक्ति कैसी होती है? तो मजनू की बात कह रहा था ना, एक बात लैला ने इसका परीक्षा लेनी चाहिए और ये देखा कि देखें मजनू कैसा है। पहले तो उसने ऐसा इंतजाम कर दिया कि मजनू को खाने को कुछ कहीं से मिल जाया करें, दुकानदारों से खाना मिलने लगा। फिर उसने ये देखा कि ऐसा तो नहीं है कि हराम खोर और ऐसे ही पकड़ कर खा रहा हो, तो इंसान तो नहीं। उन्होंने अपनी बांदी को भेजा और बांदी ने मजनू से कहा लैला बहुत बीमार है। तो मजनू बड़ा दुखी हुआ, उसने कहा दुखी होने से क्या फ़ायदा, आप कुछ मदद कीजिए ना उनके लिए, दुखी होते हैं। दुखी क्या होते हैं? लैला को हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार क्या करते हैं? प्यार करते हैं तो कुछ दीजिए ना। तो उन्होंने कहा मैं क्या दूँ? उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने यह कहा है लैला की नसों में खून का एक प्याला चढ़ाया जाएगा, आप अपना खून देंगे क्या, इससे कि लैला की ज़िंदगी बचाई जा सके? मजनू फौरन तैयार हो गया, उसने कटोरा जो बांदी लेकर के आई थी लबालब अपने खून से भर दिया। खून को लेकर के जब गई बांदी, तब खून को लेकर के जब गई बांदी, तब फिर उसने बांदी से एक और बात कही, बांदी जल्दी आना, जल्दी आना, मैं अभी और कई कटोरे खून मेरे शरीर में है वो सब उसके सपोर्ट करूँगा। इलाकों में मोहब्बत करता हूँ ना, मोहब्बत का मतलब देना, मोहब्बत का मतलब देना, इसीलिए मैं तो देना ही देने वाला हूँ। जब एक कटोरा खून लेकर के गई तो जो नकली मजनू थे वो सब भगा दिए गए और लैला ने अपने बाप से कह दिया जो मुझे इतनी मोहब्बत करता है और जो मोहब्बत की कीमत को समझता है उसके तो मैं साथ ही रहूँ। लैला और मजनू की शादी हुई थी, आपकी भी शादी भगवान के साथ में हो सकती है, आप ज़रूर भगवान के साथ में शादी कर सकते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, एक बात करनी चाहिए, भगवान की मर्जी पर आप चलने के लिए आमदा हो जाइए। वो कुछ आपसे चाहते हैं आप उसको कीजिए, आप चाहते हैं ठीक है, आप क्या चाहते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं उससे पहले बहुत कुछ दे दिया है भगवान ने। आपको इंसान की ज़िंदगी दी है और ऐसी बेहतरीन ऐसी समझ जिंदगी है कि इसके आधार पर आप अपनी मनमर्जी पूरी कर सकते हैं। मनमर्जी के लिए कोई कमी नहीं है। आपके हाथ कितने बड़े हैं, आपकी कर कितनी बड़ी है, आपकी जवान और आंखें कैसी शानदार हैं। आप अपनी दैनिक जरूरतों की ही जिनको आप भगवान से अपेक्षा करते हैं उसके लिए मत कीजिए अपेक्षा। आप अपनी प्रसाद से कमा सकते हैं अथवा संतोष कर सकते हैं अथवा कम में काम चला सकते हैं। आप अपनी हविष और अपनी ख्वाहिशें और अपनी तमन्ना और अपनी इच्छाएं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भगवान को दबोचेंगे, भगवान को मजबूर करेंगे कि वो कर्तव्य की बात को छोड़ दे और आपको पक्षपात करने लगे और कर्म फल की महत्ता को परित्याग कर दे। आप ऐसा मत कीजिए, उनको न्यायाधीश रहने दीजिए। आप भगवान को बेइज्जत मत कीजिए, आप अपनी मर्जी के लिए उनको पक्षपाती मत बनाइए। ऐसा वो करेंगे भी नहीं, आप बनाना चाहेंगे तो कब करेंगे वो। इसलिए तरीका एक ही है, आप उस शक्ति के भंडार के साथ में अपने आप को मिला दें, जोड़ लें। और मिला ले जोड़ने का तरीका फिर वही है, फिर समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए आपको उनकी मर्जी पर चलना पड़ेगा। आप अपनी मर्जियाँ ख़त्म कीजिए, आप अपनी आकांक्षाएँ ख़त्म कीजिए, आप अपनी इच्छाएँ ख़त्म करिए। आप उन्हीं के हो जाइए और उन्हीं के साथ रहिए। उनके साथ आप हो जाते हैं तो वो आपके हो जाइए, आप उनके हो जाइए और आप उनको बना लीजिए। राजा हरिश्चंद्र बिके थे एक बार और भंगी इनको खरीद ले गया था। भगवान भी चौराहे पर बिकने के लिए खड़े हैं और वो आवाज़ लगाते हैं, हम बिकने के लिए खड़े हैं, कोई हमको खरीद ले जाए। जो हमको खरीद लेगा उसी की सेवा करेंगे, उसी के साथ साथ रहेंगे। आप चाहे तो इनको खरीद सकते हैं, क्या कीमत है, अपने आप को बेच दीजिए उनके हाथों, उन्हें अपने हाथों खरीद लीजिए। स्त्री अपने हाथों अपने आप को अपने पति के हाथों सौंप देती है और अपने आप को बेच देती है उनके हाथों, इसकी कीमत पर पति को खरीद लेती है। बस यही मित्रता का रास्ता है, यही भगवान की भक्ति का रास्ता है। आपको अपने जीवन में ये करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। आप अपना अपने घिनौने चिंतन को बदलिए, आप अपने छोटे वाले दृष्टिकोण को बदलिए, आप अपने लोभ और लालच से बच जाइए और भगवान की सुंदर दुनिया को ऊंचा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए उनके राजकुमार के तरीके से संपदा को, उनकी प्रति को ऊंचा और अच्छा बनाने के लिए कमर बांध के खड़े हो जाइए। आप समर्पित होइए, शरणागति में आइए, विलय कीजिए, विसर्जन कीजिए और देखिए आप क्या पाते हैं। बीज की तरीके से गल जाइए और पेड़ की तरीके से उगने की तैयारी कीजिए। आप कुछ त्याग नहीं करेंगे तो पाके से लेंगे, और जो त्याग करना है उसमें जप करना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी तो है पर काफ़ी नहीं है। आपको चावल चढ़ा देना, धूप बत्ती उतार देना, आरती उतार देना ज़रूरी तो है पर काफ़ी नहीं है, कुछ ज़्यादा करना है। और ज़्यादा करने के लिए आपको अपना कलेजा छोड़ा कीजिए और तैयारी कीजिए। आज मुझे यही निवेदन करना था आप सब लोगों से। ओम शांति।